इन संदेशों से कृष्ण के मन में कितनी तकलीफ हुई है और वे अपना सा मान करके, माने ये बात मेरे लिए कही गई हो ऐसा मानकर, क्योंकि अर्जुन के साथ कृष्ण अभिन्न है, जो अर्जुन का है वो मेरा है, जो अर्जुन का नहीं वो मेरा नहीं, ऐसे भाव वाले कृष्ण तपाक से बैठ गए। आरंभ में मधुर लेकिन परिणाम में कठोर शब्दों से मुझे कहा, संजय मेरी बात को ध्यान से सुनना, बुद्धिमान धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म, आचार्य द्रोण से तुम हमारी ओर से ये संदेश कहना, तुम बड़ों को हमारा प्रणाम कहना, छोटों से हमारा कुशल क्षेम कहना, और ये कहना अब आप लोगों के ऊपर संकट छा गया है। क्या बताऊं महाराज, वो जिस समय बोल रहे थे उस समय मानो पृथ्वी कांप रही हो। आगे उन्होंने कहा, इसलिए तुम अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो, ब्राह्मणों को दान दो, स्त्री पुत्रों के साथ कुछ दिन और आनंद ले लो। देखो अपना चीर खींचे जाते समय द्रौपदी ने जो हे गोविंद ऐसा कहकर मुझ द्वारिकावासी को पुकारा था, उसका मेरे ऊपर अभी ऋण बढ़ गया है। यह एक क्षण को भी मेरे हृदय से दूर नहीं होता। भला जिसके साथ मैं हूं उस अर्जुन से युद्ध करने की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सकता है, वही कर सकता है जिसके सिर के ऊपर काल नाच रहा है। उन्होंने द्रौपदी की ओर अंगुली करके कहा, इसके साथ होने वाले अत्याचारों को मैं, इन कौरवों को इस प्रकार से देख ही नहीं सकता हूं। मुझे देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, नागों में ऐसा कोई भी नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में अर्जुन का सामना कर सके। मुझे बड़ा आश्चर्य है, विराट नगर में उस अकेले अर्जुन ने कौरव में भगदड़ मचा दी, सब इधर उधर चंपत हो गए, फिर भी आप लोग नहीं चेतते। बल, पराक्रम, तेज, फुर्ती, कार्य की सफाई, धैर्य, अविषाद, धर्म, सत्यता, ये सारे गुण अर्जुन के सिवा और किसी व्यक्ति में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अर्जुन संजय की जो बात है उसको प्रेम से सुन लेना, परंतु इनके बताए हुए काम के अंदर युद्ध न हो ऐसा मत बोलना। द्रौपदी के ऋण को उतारने का वही समय होगा। हे महाराज, उस समय बहुत घबरा गया है, ये स्थिति है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय संजय उसके बाद आगे कुछ बोल नहीं सके और वो चुप हो गए। उनके आंखों से आंसू बहने लग गए। इधर कर्ण ने देखा, ये सब भयभीत हो गए कृष्ण की बात सुनकर, तो वह खड़ा होकर दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए कहने लगा, गुरुवर परशुराम जी से मैंने जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वो अभी तक मेरे पास है, अतः अर्जुन को जीतने में तो मैं अच्छी तरह से समर्थ हूं, उसे परास्त करने का भार मेरे ऊपर डाल दीजिए। इसके सिवा मैं पांचाल, करूस, मत्स्य और बेटे पोतों सहित अन्य सब पांडवों को एक क्षण में मारकर शस्त्रास्त्र के द्वारा प्राप्त होने वाले लोगों को प्राप्त करूंगा। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सब राजा लोग भी आपके पास ही रहे, आप मुझे अकेले को जाने दीजिए। पांडवों को तो अपनी प्रधान सेना सहित जाकर मैं स्वयं मार दूंगा, ये काम मेरे जिम्मे छोड़ो। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था, भीष्म जी कहने लगे, कर्ण चुप रहो, जिसके सामने तुम दुबक करके भगाए उसको मारने का आज ठेका लेने के लिए आए हो। तुम्हारी बुद्धि कालवश नष्ट हो गई, क्यों इतनी बड़बड़कर बातें बनाते हो? याद रखो, इन कौरवों की मृत्यु तो पहले तुम जैसे प्रधान वीरों के मारे जाने पर अवश्य होगी। पहले तुम मरोगे, उसके बाद कौरव मरेंगे। इसलिए तुम अपनी मृत्यु का प्रबंध करो, उसकी रक्षा का प्रबंध करो। खांडव वन का दाह करते समय श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जो काम किया था उसे सुनकर तुम्हें अपने बंधु बांधुओं सहित होश में आना चाहिए। अग्नि को जिन्होंने जीत लिया, कारण क्यों तुम बीच में बोल उठे? संजय कितनी बढ़िया एक झांकी प्रस्तुत किए थे, मैं तो उस ध्यान में डूब गया। वाह रे कृष्ण, वाह अर्जुन, क्या तुम्हारा प्रेम है? वाह द्रौपदी, क्या तुम्हारी करुण दशा जिसके हृदय में बैठी हुई है, उस करुणा वर्णालय श्री कृष्ण की वो बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तुमने हमारे इस संवाद में, इस ध्यान में बाधा डाल दी। कारण याद रखो, बाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले ये श्री कृष्ण हैं जो आज अर्जुन के पक्ष में बोल रहे हैं। तुम इतना भी नहीं समझ सकते? तुम्हारे कहे हुए संदेश का उत्तर जहां अर्जुन को देना चाहिए था वहां कृष्ण दे रहा है, इससे तुम इनकी मैत्री और प्रेम को नहीं पहचानते? इस घोर संग्राम में तुम जैसे योद्धाओं को चुन चुन करके मारेंगे और मारने में उनको कोई परिश्रम नहीं होगा। कर्ण बोला, हे सभासदों, पितामह जैसा कहते हैं श्री कृष्ण तो निस्संदेह वैसे ही हैं, शायद उससे भी बढ़कर हो, लेकिन पितामह ये क्यों भूल रहे हैं कि कृष्ण वहां पर युद्ध नहीं करेंगे, उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं रहेगा, ये भी तो याद रखो। पितामह, आपने मेरे लिए बहुत कुछ कड़ी कड़ी बातें कही हैं, उसका परिणाम भी ये कान खोलकर सुन ले आप। अब मैं अपने शस्त्र रख देता हूं, आज से मुझे पितामह रणभूमि या राजसभा में नहीं देखेंगे। बस आपका अंत हो जाएगा, जिस दिन आप मरोगे तभी पृथ्वी के सब राजा लोग मेरा प्रभाव देखेंगे। आपके जीते जी ये प्रभाव आपके सामने प्रकट होने वाला नहीं है। इतना कहकर अपना धनुष रखकर धनुर्धर कर्ण सभा से उठकर अपने घर की ओर चला गया। अब भीष्म जी सब राजाओं के सामने हंसते हुए राजा दुर्योधन से कहने लगे, राजन, सुन लिया कर्ण की वीरता को? युद्ध से पहले शस्त्र डाल दिए? वाह, इसी के भरोसे तुम युद्ध करना चाहते थे और कहते थे कि तुम सब अलग हो जाओ और मैं अकेला ही पर्याप्त हूं, ये कर्ण पर्याप्त है। कर्ण कहता, मैं पर्याप्त हूं, युद्ध शस्त्र तो पहले ही डाल दिए। कर्ण तो सत्य प्रतिज्ञा है ना? फिर उसने जो राजाओं के सामने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, मैं नित्य प्रति हजारों वीरों का संहार करूंगा, अब वो कैसे पूरा करेगा? पूछो, क्यों दुबक के भग गया? इसका धर्म और इसकी तपस्या ये सब नष्ट हो गई। जब इसने भगवान परशुराम जी के पास जाकर अपने को ब्राह्मण बताते हुए उनसे शस्त्र सीखी थी, शस्त्र विद्या सीखा था, असत्य से हासिल की हुई विद्या इसको कैसे फलीभूत होने देगी? जब भीष्म ने इस प्रकार कहा, और कर्ण तो शस्त्र छोड़कर सभा से चला ही गया तो मंद बुद्धि दुर्योधन कहने लगा, पितामह। अब उसकी त्योरी में कुछ और तेजी थी। पितामह, पांडव लोग और हम अस्त्र विद्या, योद्धाओं का संग्रह, शस्त्र संचालन की फुर्ती और सफाई, इन सब में हम समान हैं। और भी दोनों मनुष्य जाति के हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पांडवों की विजय होगी? किस बल पर बोलते हैं? आप ये याद रखिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाल्मीकि और आप, इन लोगों पर मैंने युद्ध नहीं ठाना है, मैंने युद्ध ठाना है कर्ण, दुशासन और अपनी बाहुबल पर। हम तीनों अपने पैनों बाणों से युद्ध करेंगे, मारेंगे और मरेंगे। इस पर विदुर जी ने कहा, दुर्योधन, इस संसार में वृद्ध पुरुष शांति को ही कल्याण का साधन मानते हैं। जो पुरुष दम, दान, तप, ज्ञान और स्वाध्याय का अनुसरण करता है, उसी को दान, क्षमा और मोक्ष यथावत रूप से प्राप्त होते हैं। तुम तेज की दम तेज की वृद्धि करता है, दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है। दम माने इंद्रियों का दमन करना, शांति रखना। इस प्रकार जिसका पाप निवृत्त होकर तेज बढ़ गया है, वह पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। राजन, जिस पुरुष में क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अचंचलता, अधीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा इतने गुण हैं, वह दमयुक्त प्राणी कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा, बढ़कर कर बातें करना, अपना मान रखना, ईर्ष्या और शोक, इन्हें तो अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और षटता से रहित होना तथा शुद्धता से रहना, ये दमशील पुरुष का लक्षण है। दुर्योधन, जो पुरुष लोलुपता रहित, भोगों के चिंतन से विमुख और समुद्र के समान गंभीर होता है, वो दमशील कहा गया है। अच्छे आचरण वाला, शीलवान, प्रसन्न चित्त, आत्मवेत्ता और बुद्धिमान पुरुष इस लोक में सम्मान पाकर मरने पर भी सदगति को प्राप्त होता है। तात, हमने पूर्व पुरुषों से एक बात सुनी थी। किसी समय एक चिड़िया मारने, चिड़िया को फंसाने के लिए पृथ्वी पर जाल फैला दिया। उस जाल में साथ साथ रहने वाले दो पक्षी फंस गए। जब वे दोनों उस जाल को लेकर उड़ चले तो चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार उन्हें आकाश में चढ़े देखकर उदास हो गया, और जिधर जिधर वे जाते उधर उधर उसका पीछा कर रहा था। इतने में ही एक मुनि की उस पर दृष्टि पड़ी। उस शिकारी ने मुनिवर से पूछा, उस शिकारी से मुनिवर ने पूछा, माने मुनि ने कहा शिकारी से, ए व्यास, मुझे ये बात बड़ी विचित्र जान पड़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर भटक रहा है। याद ने कहा, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, इसलिए मेरे जाल को ले जा रहे हैं। जब जहां इनमें आपस में झगड़ा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वश में आ जाएंगे। और यही हुआ। दुर्योधन थोड़ी देर में काल के वशीभूत हुए उन पक्षियों में झगड़ा होने लगा और दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। बस क्या चाहिए था चिड़ी मार को, उसने चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जब दो कुटुंबियों में संपत्ति के लिए परस्पर झगड़ा होने लगता है तो वे शत्रुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। आपसदारी के काम तो साथ बैठकर भोजन करने से, प्रेम से बातचीत करने से, एक दूसरे के सुख दुख को पूछने से, आपस में मिलते जुलते रहने से और विरोध न करने से सुलझ जाते हैं। एक साथ बैठो, एक साथ प्रेम से बोलो, अपनी समस्या बताओ, उनकी समस्या सुनो, मिलजुल कर हल निकालो। यही बुद्धिमान पुरुषों का आदर्श है। जो शुद्ध हृदय पुरुष समय आने पर गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, वे सिंह से सुरक्षित वन के समान किसी के भी दबाव में नहीं आ सकते। दुर्योधन, तुम्हारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, ये सब आज पृथ्वी के बहुत बड़े बुद्धिमान पुरुषों में माने जाते हैं। इनके साथ बैठकर और पांडवों को भी बुलाकर आपस में स्नेह का वातावरण क्यों नहीं बना लेते? सुनो, एक बार कई भील और ब्राह्मणों के साथ हम गंधमादन पर्वत पर गए। कई भील और ब्राह्मणों के साथ हम गंधमादन पर्वत पर गए। कौन? विदुर जी कह रहे हैं। अनेकों विषधर सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे गंधमादन पर्वत की। वह ऐसा गुणयुक्त था कि यदि कोई पुरुष उसे पाले तो अमर हो जाए, अंधा सेवन करे तो सूस्ता हो जाए, बूढ़ा युवा हो जाए, उस गंधमादन पर्वत पर चला जाए। पर चला जाना कोई मामूली बात थी, चारों तरफ विषधर सर्प थे, कौन जाए? भील लोग उसे प्राप्त करने का लोभ न रोक सके और उस सर्पों वाली गुफा में जाकर नष्ट हो गए। हमने वहां एक शहद से भरा हुआ छत्ता देखा। उस छत्ते की रक्षा विषधर सर्प कर रहे थे। भील लोग उसे प्राप्त करने का लोभ रोक नहीं सके और सर्पों वाली गुफा में जाकर नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी को भोगना चाहता है उन भीलों के समान। उन भीलों ने देखा कि ये शहद का छत्ता हमको मिल जाएगा, हम खा लेंगे, ब्राह्मण और ये सब रहने दो। ऐसे ही अकेला दुर्योधन सारी पृथ्वी को भोगना चाहता है। इसे मुंहवश शहद तो दिखता है परंतु अपने नाश का सामान दिखाई नहीं देता। धृतराष्ट्र, अपने पुत्र को समझाओ। याद रखिए, जिस प्रकार अग्नि सब वस्तुओं को जला डालता है, वैसे ही द्रुपद, विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन और उससे भी ज्यादा क्रोध करने वाले भीम ये संग्राम में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। महाराज, आप युधिष्ठिर को भी अपनी गोद में स्थान दीजिए, नहीं तो इन दोनों का युद्ध होने पर किसकी जीत होगी क्या बताया जा सकता है। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उस पर ध्यान दो बेटा। तुम अनजान बटोही के समान इस कुमार्ग को सुमार्ग समझ रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसी से तुम पांचों पांडवों के तेज को दबाने का विचार करते होंगे। उनका तेज नहीं दबाया जा सकता, याद रखो प्रिय पुत्र, उन्हें जीतने का विचार करना अपने प्राणों को संकट में डालने के समान है। श्री कृष्ण अपने देह, गेह, स्त्री, कुटुंबी और राज्य को एक ओर तथा अर्जुन को दूसरी ओर समझते हैं, जैसा अभी संजय ने बताया। कैसा विचित्र उनका प्रेम है, उसके ऊपर तुमको विचार करना चाहिए। वे सब कुछ त्याग सकते हैं, पर अर्जुन को नहीं त्याग सकते। बेटा, जहाँ अर्जुन रहता है वहाँ कृष्ण रहते हैं, और जहाँ कृष्ण रहता है वहाँ पर सब कुछ, विजय आदि सब रहते हैं। उसका वेग तो पृथ्वी के लिए भी असह्य हो जाता है। देखो, तुम सत्पुरुषों और तुम्हारे हित की बात कहने वाले सुरिदों के कथनानुसार आचरण करो। हमारे बूढ़े पितामह भीष्म की बात पर ध्यान दो। मैं भी कौरवों के हित की बात सोचता हूँ, तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए। द्रोण, कृपाचार्य, विकर्ण एवं महाराज वाल्मीक के कथन पर भी ध्यान देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, ये सब धर्म के मर्मज्ञ है और कौरव तथा पांडवों पर समान स्नेह रखने वाले हैं। तुम पांडवों को अपने सगे भाई समझकर उन्हें आधा राज्य क्यों नहीं दे देते बेटा? मतलब मोह नहीं छोड़ रहा है धृतराष्ट्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दुर्योधन से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने संजय से फिर कहा, संजय अब तो जो बात सुनानी रह गई है वो भी कह दो। कृष्ण के बाद अर्जुन ने तुमसे क्या कहा था, उसे सुनने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है, सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज, कृष्ण की फटकार सुनने के बाद कुंती पुत्र अर्जुन ने कृष्ण के सामने कहा, संजय, तुम पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, राजा वाल्मीक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, शकुनी, दुशासन, विकर्ण और वहां इकट्ठे हुए समस्त राजाओं से मेरा यथा योग्य अभिवादन कहना और मेरी ओर से कुशल पूछना तथा पापात्मा दुर्योधन, उसके मंत्री और वहां आए हुए सब राजाओं को श्री कृष्णचंद्र का समाधान युक्त संदेश सुनाकर मेरी ओर से इतना कहना, शत्रुदमन महाराज, युधिष्ठिर जो अपना भाग लेना चाहते हैं वो यदि तुम नहीं दोगे तो मैं अपने तीखे तीरों से तुम्हें घोड़े, हाथी और पैदल सेना सहित यमपुरी भेजना चाहूंगा। महाराज, उसके बाद मैं अर्जुन से विदा होकर और श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका गौरवपूर्ण संदेश आपको सुनाने के लिए तुरंत यहाँ चल। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस संदेश को दुर्योधन ने भी सुना था। कृष्ण की और अर्जुन की इन बातों को दुर्योधन ने कुछ भी आदर नहीं दिया। उस सभा में उसके ऐसे लटके हो रहे थे जिससे वो बेपरवाही झलक रही थी। सब लोग चुपचाप गंभीरता से सुन रहे थे, परंतु दुर्योधन, शकुनी इत्यादि इत्यादि उनके पक्ष के लोग हंसी जैसी बातें कर रहे थे। फिर वहां जो देश देशांतर के नरेश बैठे थे वे सब अपने अपने डेरों में चले गए और आपस में फुसफुसाते हुए बातें करने लगे, देखो क्या किया जाए। बात तो पांडवों की सही है, कृष्ण और अर्जुन ने सटीक बात कही है। इसके बाद एकांत में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, तुम तो दोनों पक्षों के बलाबल का ज्ञान रखते हो, यो भी तुम धर्म और अर्थ का रहस्य अच्छी तरह जानते हो, किसी भी बात का परिणाम तुमसे छिपा नहीं है, तुम मुझे ये बताओ, क्या इस युद्ध में मेरे पुत्रों की विजय हो जाएगी ना। संजय ने कहा, राजन एकांत में तो मैं आपसे कोई भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि इससे आपके हृदय में बड़ी डाह पैदा होगी। इसलिए मैंने सुना है महान तपस्वी भगवान व्यास जी आ रहे हैं, महारानी गांधारी जी को भी बुलवा लीजिए, उन दोनों के सामने मैं श्री कृष्ण और अर्जुन का पूरा पूरा विचार सुना दूंगा। संजय के इस प्रकार कहने पर गांधारी और श्री व्यास जी को बुलाया गया और विदुर जी तुरंत ही उन्हें सभा में ले आए। तब महामुनि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र और संजय का विचार जानकर उनके मत पर दृष्टि रखते हुए कहने लगे, संजय धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, अतः उनकी आज्ञा के अनुसार तुम श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में जो कुछ जानते थे जानते हो वो सब का सब सुना दो। संजय ने कहा, महाराज सुनिए, अर्जुन और कृष्ण दोनों ही बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। श्री कृष्ण के चक्र का भीतर का भाग 5 हाथ चौड़ा है और वे उसका इच्छानुसार प्रयोग करते हैं। नरकासुर, संबरासुर, कंस, शिशुपाल कैसे बड़े भयंकर वीर थे, किंतु भगवान कृष्ण ने इन्हें खेल ही में परास्त कर दिया। यदि एक ओर सारे संसार की और दूसरे ओर श्री कृष्ण को रखा जाए तो कृष्ण ही बल में अधिक निकलेंगे। वे संकल्प मात्र से सारे संसार को भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो वहीं रहते हैं जहां सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का निवास होता है, और जहां कृष्ण रहते हैं वहीं विजय होती है। वे सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन क्रीड़ा से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोक को प्रेरित कर रहे हैं। इस समय सबको अपनी माया से मोहित करके, सुनिए, वे ही पांडवों को निमित्त बनाकर आपके अधर्म निष्ठ मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। ये कृष्ण की इच्छा है, उनका संकल्प है। इस संकल्प को तुम कैसे मिटाओगे? ये केशव अपनी चित शक्ति से अहर्निश काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं आपसे सत्य कहता हूं, एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और संपूर्ण स्थावर जंगम जगत के स्वामी हैं, तथा अपनी माया के द्वारा लोगों को मोह में डालते हैं। व्यास जी मेरे सामने हैं, व्यास जी के सामने मैं ज्यादा क्या कह सकता हूं? मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं, महाराज, जो लोग केवल उनकी शरण लेते हैं वे ही मोह से बच सकते हैं, बाकी कोई मोह से बचने वाला नहीं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, श्री कृष्ण समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों नहीं जानता? इसका रहस्य क्या है, मुझे बताओ। और ये दुर्योधन क्यों नहीं समझता, इसका भी कारण बताओ। संजय ने कहा, महाराज, आपको ज्ञान नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी मंद नहीं पड़ती। आपको तो चारों तरफ अपना पुत्र मोह घेरे रखा है, आपको तो पुत्र मोह ने घेरे रखा है, उसके बाहर आपका कोई ज्ञान है ही नहीं। जो पुरुष ज्ञानहीन है वह कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। मैं ज्ञान दृष्टि से प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले अनादि मधुसूदन भगवान को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मेरे अंदर किसी के प्रति कोई डाह, मोह, द्वेष, राग नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अब पुत्र तो सबको ही प्रिय लगते हैं, मुझे लगता है तो मुझे ही दोष क्यों देते हैं? तुम्हारी कृष्ण में सदा भक्ति रहती है, उस कृष्ण का स्वरूप क्या है? संजय ने कहा, महाराज उसका स्वरूप जानकर क्या करोगे? जब आप अपने बेटे से मोह नहीं हटा सकते, वो कृष्ण की भक्ति और उसका स्वरूप आपके अंतःकरण में कैसे उतरेगा? आप पूछते हैं तो मैं अपने हृदय को भगवान में रखने के लिए उत्तर देता हूँ। मैंने कभी कपट का आश्रय नहीं लिया, किसी व्यर्थ धर्म का आचरण नहीं किया। मैंने नित्य प्रति कृष्ण का ध्यान किया, मेरा भाव शुद्ध हो गया। मैं बार बार अपने अंतःकरण को टटोल टटोल करके देखता हूँ, कहीं किसी के प्रति मोह तो नहीं है, कहीं किसी के प्रति शत्रुता तो नहीं है, कहीं कोई मुझे संसार में बुरा तो नहीं लगता है ना। तब जाकर कृष्ण में अनुराग होता है। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, पुत्र दुर्योधन, संजय हमारे बड़े हितकारी और विश्वास पात्र है, अतः तुम ऋषिकेश जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लो ना, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, देवकी नंदन भगवान कृष्ण भले ही तीनों लोगों का संहार कर डाले, परंतु जब वे अर्जुन के साथ मिल गए हैं और अर्जुन का सखा घोषित हो गए हैं, तो ये आपका पुत्र दुर्योधन उनकी शरण में नहीं जा सकता। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारा ये दुर्बुद्धि और अभिमानी पुत्र ईर्ष्यावश सत्पुरुषों की बात न मानकर अधोगति की ओर जा रहा है, प्रिय पुत्र दुर्योधन को बचाओ ना। गांधारी ने कहा, दुर्योधन, हमने आज तक तुमको कुछ नहीं कहा है, तू बड़ा ही दुष्ट बुद्धि और मूर्ख है, तू ऐश्वर्य के लोभ में फंसकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है अब तू जल्दी ही अपने ऐश्वर्य जीवन पिता माता सभी से हाथ धोने वाला है। देख, जब भीमसेन तेरे प्राण लेने को तैयार होगा, उस समय तुझे अपने लोगों की पिता की सबकी बात याद आएगी। फिर व्यास जी बोले, धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो, अर्जुन कृष्ण को प्यारा है, दूसरा कोई प्यारा नहीं, ये हृदय से भाव निकाल दो। तुम श्री कृष्ण के प्यारे हो, मैं भी प्यारा हूँ, सब प्राणी प्यारे हैं, दुर्योधन भी प्यारा है, तुम कृष्ण को समझो। तुम्हारा संजय जैसा दूत है, वह तुम्हें कल्याण के मार्ग में ले जाने के लिए कितनी अच्छी बात बोलता है, इसे पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के स्वरूप का पूरा ज्ञान है, अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो जन्म मरण के महान भय से मुक्त हो जाओगे। जो लोग कामनाओं से अंधे हो रहे हैं, वे अंधे के पीछे लगे वे अंधे के समान अपने ही कर्मों के अनुसार बार बार मृत्यु रूप कुएं के मुख में चले जाते हैं। अंधे ने अंधे का सारा पकड़ लिया, पहला अंधा कुएं में गिरा, सब मुक्ति का मार्ग तो सबसे निराला है धृतराष्ट्र, उसे तो महापुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं, और वे ही महापुरुष होते हैं जिनकी कहीं भी आसक्ति या मोह नहीं होता। धृतराष्ट्र, तुम बड़े मोहग्रस्त हो, अपनी मोह की निद्रा को हटाओ। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, भैया संजय, तुम मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ। जिसे चलकर मैं कृष्ण को पा सकूं और मेरी मुक्ति हो जाए। संजय ने कहा, राजन जैसा आपका व्यवहार है असंभव है। बात तो आप विदुर जी से कितनी सुने हो, सनत सुजाति का उपदेश आपने रात भर सुना है और अभी भी विदुर जी ने कितनी अच्छी बात कही है। बात सुनते तो हो पर महाराज आप सुनी हुई बात को मानते कितना हो, आदर कितना देते हो। कोई अजितेंद्रिय पुरुष ऋषिकेश भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, इसके सिवा उनको पाने का कोई मार्ग भी नहीं है। जब तक अपनी इंद्रियों को और मन को नहीं जीतोगे कैसे प्राप्त करोगे। इंद्रियां बड़ी उन्मत्त हैं, इन्हें जीतने का साधन सावधानी से भोगों का त्याग देना है, प्रमाद और हिंसा से दूर रहना है। निस्संदेह ये ज्ञान के मुख्य कारण है। इंद्रियों को निश्चल रूप से अपने काबू में रखना, इसी को विद्वान लोग ज्ञान कहते हैं। वास्तव में यही ज्ञान है, यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग उस परम पद की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय क्या करूं, तुम एक बार फिर मुझे कृष्णचंद्र के स्वरूप का वर्णन करो जिससे कि उनके नाम और कर्मों का रहस्य जानकर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। संजय ने कहा, ये तो सब मैं सुना दूंगा, मुझे आता है उसमें सुनाने में कोई कमी नहीं है, पर आपने अभी तक मुझे ये नहीं कहा है कि मेरा दुर्योधन से मोह भंग हो गया। फिर भी आपने पूछा है, मुझे कृष्ण के विषय में सुनाने में बहुत आनंद का अनुभव होता है। मैंने कृष्ण के कुछ नामों की व्युत्पत्ति माने तात्पर्य जैसा सुना है वो बताता हूं। श्री कृष्ण वास्तव में किसी प्रमाण के विषय नहीं है, आंख के कान के जीभ के इसके विषय नहीं है। समस्त प्राणियों को अपनी माया से आवृत किए रहने तथा देवताओं के जन्म स्थान होने के कारण वे वासुदेव कहलाते हैं। व्यापक और महान होने के कारण विष्णु कहलाते हैं। मौन ध्यान और योग से प्राप्त होने के कारण माधव कहलाते हैं। मधुदैत्य का वध करने वाले और सर्व तत्वमय होने से वे मधुसूदन कहलाते हैं। कृष्ण का अर्थ जानते हो, कृष्ण धातु का अर्थ है सत्ता और न आनंद का वाचक है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए श्री विष्णु कृष्ण कहलाते हैं, माने जिसकी सत्ता भी है और जिसमें आनंद भी है। हृदय रूप पुंडरीक माने श्वेत कमल ही आपका नित्य आलय है और अविनाशी परम स्थान है, इसलिए आप पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। तथा दुष्टों का दमन करने के कारण से जनार्दन है, क्योंकि आप सत्व गुण से कभी च्युत नहीं होते, न कभी सत्व की आप में कमी होती है, इसलिए आप सात्वत हैं। आर्ष अर्थात उपनिषदों से प्रकाशित होने के कारण आप आर्षभ हैं, तथा वेद ही आपके नेत्र हैं, इसलिए आप वृषभेक्षण हैं। आप किसी भी उत्पन्न होने वाले प्राणी से उत्पन्न नहीं होते, इसलिए आप अज हैं। उदर माने इंद्रियों के स्वयं प्रकाशक और दाम माने जिसका दमन करने वाले होने से आप दामोदर हैं। ऋषिक माने वृत्ति सुख और स्वरूप सुख को कहते हैं, इसके ईश होने से आप ऋषिकेश कहलाते हैं। स्वरूपानंद और विषयानंद दोनों से ऊपर उठे होने के कारण इनको ऋषिकेश कहा जाता है। अपनी भुजाओं से पृथ्वी और आकाश को धारण करने वाले होने से आप महाबाहु कहलाते हैं। आप कभी अधः नीचे की ओर क्षीण नहीं होते, अतः अधोक्षज कहलाते हैं। तथा नरों माने जीवों के अयन माने आश्रय होने से नारायण कहे जाते हैं। जो सब में पूर्ण और सबका आश्रय हो उसे पुरुष कहते हैं। उनमें श्रेष्ठ होने से आप पुरुषोत्तम हैं। आप सत और असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, तथा सर्वदा उन सबको जानते हैं, इसलिए आप सर्व हैं। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य उनमें प्रतिष्ठित है, तथा वे सत्य के भी सत्य है, इसलिए उनका नाम सत्य भी है। वे विक्रमण माने मावन अवतार में अपने क्रम डगों से विश्व को व्याप्त कर लिए थे, इस कारण विष्णु है। जय करने के कारण से जिष्णु है। नित्य होने के कारण अनंत है। गो अर्थात इंद्रियों के ज्ञाता होने से गोविंद है। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति से असत्य को सत्य सा दिखाकर सारी पृथ्वी को मुंह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में स्थित रहने वाले भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा ही है। वे अच्युत भगवान कौरवों को नाश से बचाने के लिए अब यहाँ पधारने वाले हैं। धृतराष्ट्र बोले, संजय क्या करूं, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु इधर दुर्योधन की बातें सुनता हूं तो भय भी लगता है, मेरा बेटा मर जाएगा। जो लोग अपने नेत्रों से भगवान के तेजोमय दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, उन नेत्रवान पुरुषों के भाग्य की मुझे भी लालसा तो होती है। मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत कीर्ति तथा ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ पुराण पुरुष श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ, जिन्होंने तीनों लोकों की रचना की है, जो देवता असुर नाग और राक्षस सभी की उत्पत्ति करने वाले हैं, तथा राजाओं और विद्वानों में प्रधान है। उन इंद्र के अनुज श्री कृष्ण की मैं शरण में हूँ, और संजय में क्या कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, महाराज मुख से बोलने से काम नहीं चलेगा। अंदर में तो आपका अपने पुत्र में मोह है, ऊपर से आप कृष्ण की शरण बोलते हैं, पर इतना याद रखिए, कृष्ण का शरण कभी व्यर्थ नहीं होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर संजय धृतराष्ट्र को अपने मन की बात बता दिए, और उधर युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, वो प्रसंग अब कल चलाया जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।